ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल भारत की 3 दिवसीय यात्रा पूरी कर लौटे स्वदेश। नेपाल भारत सीमा विवाद को कूटनैतिक माध्यम से समाधान करने को लेकर नेपाल को बताया प्रतिबद्ध। अंतरव्यवस्थापिका मंच का 11वां सम्मेलन 9 सूत्रीय संदेश पत्र जारी करते हुए कैलाली के टीकापुर में हुआ संपन्न। हुलाकी राजमार्ग अंतर्गत दांग बांके और बर्दिया खंड में लगभग 36 किलोमीटर सड़क विस्तार कार्य हुआ शुरू। और अमेरिका के परमाणु निरस्त्रीकरण के आग्रह को उत्तर कोरिया ने किया अस्वीकार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि रामिछाने ने समसामयिक राजनीतिक विषयों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। रासोपा के महामंत्री कविन्द्र बुरला कोटी के अनुसार बैठक कल सुबह 9 बजे सिंह दरबार स्थित संघीय संसद सचिवालय के अंतर्गत सार्वजनिक लेखा समिति के सभाकक्ष में आयोजित होगी। बैठक में प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दलों से पार्टी अध्यक्ष अथवा सभापति सहित 2-2 प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। महामंत्री बुरला कोटी ने बताया कि सर्वदलीय बैठक की सूचना और आमंत्रण पत्र प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रीय सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनीतिक दलों को भेज दिए गए हैं। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल भारत की 3 दिवसीय औपचारिक यात्रा पूरी कर आज स्वदेश लौट आए हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के मैत्रीपूर्ण निमंत्रण पर वे शुक्रवार को नई दिल्ली गए थे। यात्रा के दौरान मंत्री खनाल ने शनिवार को अपने भारतीय समकक्ष के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता की। वार्ता में विकास सहयोग, संपर्क नेटवर्क विस्तार, व्यापार एवं पारवहन, ऊर्जा तथा जनस्तरीय संबंधों को और सुदृढ़ बनाने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली प्रवास के दौरान मंत्री खनाल ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और भारतीय जनता पार्टी के विदेश विभाग प्रमुख डॉ विजय चौथाईवाले से अलग अलग मुलाकात भी की। स्वदेश लौटने से पहले नई दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में मंत्री खनाल ने कहा कि नेपाल भारत के बीच सीमा संबंधी समस्याओं का समाधान वार्ता और कूटनीतिक माध्यमों से करने के लिए नेपाल तैयार है। उन्होंने दोहराया कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी नेपाली भूमि है और इस संबंध में नेपाल अपनी आधिकारिक धारणा भारत और चीन के समक्ष स्पष्ट कर चुका है। सुदूर पश्चिम प्रदेश के टीकापुर में आयोजित अंतरव्यवस्थापिका मंच का 11वां सम्मेलन 9 सूत्रीय संदेश पत्र जारी करते हुए संपन्न हुआ है। सम्मेलन ने सभी प्रांतीय सभाओं में डिजिटल संसद प्रणाली स्थापित करने, अंतरव्यवस्थापिका मंच के सचिवालय का संचालन संघीय संसद सचिवालय के अंतर्गत प्रांतीय सभा संपर्क एवं समन्वय शाखा के माध्यम से करने, क्षमता विकास के लिए विधायिका प्रतिष्ठान स्थापित करने हेतु विशेष पहल करने और संसदीय बजट कार्यालय स्थापना प्रक्रिया को आगे बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण संदेश जारी किए हैं। समापन समारोह में सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने जनप्रतिनिधियों से जनता के विश्वास और अपेक्षाओं के अनुरूप ईमानदारी, निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि संघीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रांतीय सभाओं के बीच समन्वय, अनुभवों का आदान प्रदान और सहयोग आवश्यक है। सभामुख अर्याल ने संसदीय कार्य को प्रभावी बनाने के लिए समय प्रबंधन, डिजिटल प्रणाली के उपयोग और विषय केन्द्रित चर्चा की संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। सम्मेलन में संघीयता के क्रियान्वयन के दौरान संघीय संसद और प्रांतीय सभाओं द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति, प्रांतीय सभा संचालन की प्रक्रियाएं एवं पूर्व सम्मेलनों के निर्णयों के क्रियान्वयन की स्थिति, आगामी कार्यदिशा और संभावित निर्णयों पर चर्चा हुई। संविधान द्वारा परिकल्पित संघीय लोकतांत्रिक गणतांत्रिक शासन व्यवस्था की भावना को आत्मसात करते हुए संघ, प्रदेश और स्थानीय स्तर पर कानून निर्माण तथा विधायी प्रक्रियाओं को सहयोग, समन्वय और सह अस्तित्व के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कैलाली के टीकापुर में ये 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। हुलाकी राजमार्ग निदेशालय योजना कार्यालय नेपालगंज के अनुसार बांके जिले की राप्ती सुनारी ग्रामीण नगरपालिका 3 स्थित नारायणपुर से दांग की सीमा पर स्थित कुसुमपारी भवानीपुर तक हुलाकी सड़क का विस्तार किया जाएगा। कार्यालय प्रमुख लीला बहादुर भंडारी ने बताया कि दांग, बांके और बर्दिया खंड में कुल 75 किलोमीटर सड़क में से लगभग 36 किलोमीटर मार्ग का ट्रैक खोलना बाकी है और इस मार्ग पर लगभग 20 पुलों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि दांग खंड में 22 किलोमीटर सड़क और 17 पुलों के निर्माण के लिए 2.9 अरब रूपये की वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उनके अनुसार परियोजना के तहत अगले 3 वर्षों में दांग, बांके और बर्दिया में काम पूरा हो जाएगा और ये सड़क महेंद्र राजमार्ग के वैकल्पिक मार्ग के रूप में काम करेगी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। स्वास्थ्य एवं खाद्य स्वच्छता मंत्री निशा मेहता ने कहा है कि सरकार समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए विशेष प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। आज मंत्रालय में पत्रकारों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में मंत्री मेहता ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में मौजूद समस्याओं, उनके समाधान के प्रयासों और आगामी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर सरकार का ध्यान केन्द्रित है। उन्होंने बताया कि सरकार ने अपने 100 दिन के सुशासन एवं सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी है और इससे जुड़े काम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। मंत्री मेहता ने यह भी बताया कि नियमित समन्वय, सूचना और संचार के माध्यम से मंत्रालय की गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। इस वर्ष भी सुरक्षित खाद्य पदार्थों के महत्व और खाद्य जनित रोगों की रोकथाम के बारे में जनचेतना बढ़ाने पर जोर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दूषित खाद्य पदार्थों के कारण हर वर्ष लगभग 60 करोड़ लोग बीमार पड़ते हैं और करीब 4,20,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि खाद्य पदार्थों के उत्पादन से लेकर उपभोग तक हर चरण में सुरक्षा मानकों का पालन करने से खाद्य जनित रोगों के जोखिम को कम किया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है के संदेश के साथ मनाए गए इस दिवस पर सुरक्षित, पौष्टिक और स्वच्छ खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी पक्षों की साझा जिम्मेदारी पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का जिला अधिवेशन आज 28 जिलों में आयोजित हो रहा है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के प्रमुख भुवन केसी के अनुसार कोशी प्रदेश के 4, मधेश के 4, बागमती के 2, गंडकी के 4, लुम्बिनी के 3, कर्णाली के 6 और सुदूर पश्चिम के 5 जिलों में अधिवेशन हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला अधिवेशनों की निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रत्येक जिले में 3 सदस्यीय निर्वाचन समिति तैनात की गई है। रासोपा इससे पहले 38 जिलों में अधिवेशन संपन्न कर चुकी है। पार्टी की योजना प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन से पहले 77 में से 67 जिलों में अधिवेशन पूरा करने की है, जबकि शेष 10 जिलों में अधिवेशन राष्ट्रीय महाधिवेशन के बाद होंगे। रासोपा का प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन आगामी 7 से 9 आषाढ़ तक चितवन में आयोजित होगा। निजामती कर्मचारी अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं कल सोमवार से चितवन के भरतपुर अस्पताल तथा परसा के वीरगंज स्थित नारायणी अस्पताल से भी उपलब्ध होंगी। भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय ने आज सूचना जारी कर बताया कि काठमांडू स्थित निजामती कर्मचारी अस्पताल द्वारा सरकारी कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली छूट एवं रियायत सहित स्वास्थ्य उपचार सेवाएं प्रारंभिक चरण में भरतपुर और नारायणी अस्पताल में भी उपलब्ध कराई जाएंगी। सूचना के अनुसार सेवा प्राप्त करने के लिए सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को निजामती कर्मचारी अस्पताल द्वारा जारी आधिकारिक परिचय पत्र साथ ले जाना होगा। मंत्रालय ने बताया कि सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके आश्रित परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सरल, सुलभ और सुलभ पहुंच के साथ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अस्पताल की सेवाओं का प्रांतीय स्तर तक विस्तार करने की सरकारी नीति के अनुरूप ये व्यवस्था लागू की गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को और मजबूत बनाने की घोषणा करते हुए अमेरिका की परमाणु निरस्त्रीकरण की मांग को खारिज कर दिया है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने अमेरिकी प्रस्ताव को पुराना और अव्यावहारिक बताते हुए कहा कि उनका देश अपने परमाणु शस्त्रागार को लगातार सुदृढ़ करता रहेगा। उन्होंने अमेरिका के उस दावे का भी खंडन किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनफिंग उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण पर सहमत हैं। उत्तर कोरिया का कहना है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु क्षमता बढ़ाने की नीति से पीछे नहीं हटेगा। वर्ष 2019 में ट्रंप और किम जोंग उनके बीच वार्ता विफल होने के बाद उत्तर कोरिया ने अपने हथियार कार्यक्रम को और तेज कर दिया था। हाल ही में किम जोंग उन ने परमाणु सामग्री उत्पादन संयंत्र और एक हथियार कारखाने का निरीक्षण कर मिसाइल उत्पादन क्षमता में 2.5 गुना वृद्धि करने का निर्देश दिया है। इस बयान से कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल भारत की 3 दिवसीय यात्रा पूरी कर लौटे स्वदेश। नेपाल भारत सीमा विवाद को कूटनैतिक माध्यम से समाधान करने को लेकर नेपाल को बताया प्रतिबद्ध। अंतर व्यवस्थापिका मंच का 11वां सम्मेलन 9 सूत्रीय संदेश पत्र जारी करते हुए कैलाली के टीकापुर में हुआ संपन्न। हुलाकी राजमार्ग अंतर्गत दांग बांके और बर्दिया खंड में लगभग 36 किलोमीटर सड़क विस्तार कार्य हुआ शुरू। और अमेरिका के परमाणु निरस्त्रीकरण के आग्रह को उत्तर कोरिया ने किया अस्वीकार। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।